नमस्कार भारत, 9 जनवरी दिन मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। बहरीन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, संदिग्ध हालात में हो रही है जजों की मौत, मगर मोदी सरकार है खामोश।
जजेस इन्वेस्टिगेटिंग सेंसिटिव केसेस डाई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस एंड थ्रू ऑल दिस द गवर्नमेंट हैज नथिंग टू से।
बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का कहीं स्वागत कहीं विरोध।
जनता का ध्यान विकास की तरफ न जाए, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये लाउडस्पीकर का मामला लाए हैं।
बताएंगे अमित शाह के दौरे को लेकर क्यों घबराई से हैं कर्नाटक बीजेपी के नेता। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। स्वघोषित गणतंत्र सोमालीलैंड ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार बलात्कार के खिलाफ एक कानून पास किया है। अब बलात्कार को अपराध के दायरे में लाया गया है। अब तक यहां बलात्कार को सांस्कृतिक समस्या के रूप में देखा जाता था और बलात्कारियों को पीड़ितों से शादी के लिए कहा जाता था। अब कानून पास होने के बाद बलात्कारियों को कम से कम 30 सालों की जेल होगी। सोमालीलैंड ने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग स्वतंत्र देश घोषित कर लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के रूप में इसे अब भी मान्यता नहीं मिली है। सोमालिया में अब भी रेप के खिलाफ कोई कानून नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि अमेरिका अल सल्वाडोर के लगभग 2 लाख लोगों को दी गई अपने यहाँ रहने और काम करने की अनुमति को रद्द कर देगा। 2001 में आए 2 बड़े भूकंपों के बाद इन्हें अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दी गई थी। अमेरिका ने कहा है कि अल सल्वाडोर के लोगों के पास अमेरिका में रहने का कानूनी तरीका तलाशने के लिए 9 सितंबर 2019 तक समय होगा, नहीं तो उन्हें देश छोड़ना होगा। सिसिलिया मार्टिनेज 2001 में सल्वाडोर से अमेरिका आई थीं। उन्होंने अमेरिका के इस रुख पर कहा,
We've been here more than 20 years. And we consider United States our home.
हम लोग यहाँ 20 सालों से ज्यादा वक्त से हैं और हम अमेरिका को अपना घर मानते हैं। यह सच है कि हमें यहाँ अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दी गई थी, पर यहाँ हम सालों से रह रहे हैं। अब इसमें अस्थायी रूप से कुछ भी नहीं है। इनके फैसले से हम तबाह हो जाएंगे। हम लोग अब देख रहे हैं कि अमेरिका में कानूनी रूप से रहने के लिए और क्या विकल्प हो सकते हैं। ये थे सिसिलिया मार्टिनेज के शब्द। एप्पल में 2 बड़े निवेशकों ने उनकी साख के नुकसान को लेकर चेतावनी दी है। इनका कहना है कि बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल से पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर सोचने की ज़रूरत है। इन निवेशकों ने एप्पल से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का आग्रह किया है जिससे बच्चों को सीमित समय तक ही फ़ोन का इस्तेमाल करने दिया जा सके। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच कर रहे विशेष जांचकर्ता रॉबर्ट मूलर द्वारा ट्रंप से पूछताछ को लेकर प्रारंभिक बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वाशिंगटन पोस्ट अखबार का कहना है कि आने वाले हफ्तों में मूलर राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें मूलर से मिलकर खुशी होगी और वो इस जांच के दायरे में नहीं आते हैं। ट्रंप के 2 सहयोगियों ने पहले ही FBI से झूठ बोलने की बात को स्वीकार कर लिया है। यूरोपीय यूनियन प्रमुख जियां क्लाउड उंकर ने उन लोगों को आगाह किया है जो मानकर चल रहे हैं कि ब्रिटेन EU से अलग नहीं होने जा रहा। यूरोपीय यूनियन के वित्तीय भविष्य को लेकर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा, ब्रेक्जिट होगा, उन लोगों को सुनना बंद कीजिए जिन्हें लगता है कि ब्रिटिश अपनी गलती मानेंगे और ब्रेक्जिट नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि इसमें सच्चाई है। यह 30 मार्च 2019 तक संपन्न हो जाएगा। ये थे यूरोपीय यूनियन प्रमुख जियां क्लाउड उंकर के शब्द। ट्यूनिशिया में बढ़ती महंगाई और खर्चों में कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया है। ट्यूनिशिया में कीमतें आसमान छू रही हैं और साथ ही कई उत्पादों पर टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं। बांग्लादेश के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन इलाकों में पिछले 70 सालों में ऐसी ठंड नहीं पड़ी थी। सोमवार को उत्तरी पश्चिमी पंचमगढ़ में तापमान गिरकर 2.6 डिग्री तक पहुंच गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अधिकारी बैठक करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2 सालों में पहली बार मुलाकात हो रही है। इस खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आप bbchindi.com पर आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। बहरीन, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीयों को संबोधित किया, यहां पर उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों और काम करने के तरीके पर जमकर हमला बोला। राहुल ने यह भी कहा कि संवेदनशील मामलों की जांच कर रहे जजों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार।
बहरीन दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश में कई समस्याएं हैं, मगर सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही।
टुडे द ओनली थिंग इंडिया टॉक्स अबाउट इज व्हाट यू आर अलाउड टू ईट, हु इज अलाउड टू प्रोटेस्ट एंड व्हाट वी कैन से और रादर व्हाट वी कैन नॉट से। एक्टिविस्ट्स एंड जर्नलिस्ट्स आर थ्रेटन्ड।
राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में असली समस्याओं के बजाय इस पर बात हो रही है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। एक्टिविस्ट और पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं और उन्हें मारा जा रहा है। खास धार्मिक विचारों के कारण लोगों पर हमले हो रहे हैं, दलितों को पीटा जा रहा है, संवेदनशील मामलों की जाँच कर रहे जजों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही है। इतना कुछ हो रहा है लेकिन सरकार खामोश है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत नौकरी पैदा करने और नए निवेश के मामले में पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जैसे फैसले के कारण भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार थम गई है। भाषण के बाद पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लड़ना जानती है और 2019 के चुनाव में जीत हासिल करेगी।
कांग्रेस पार्टी को लड़ना आता है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हराया। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को बदलने का काम किया, पैरों पे खड़े करने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि ये पार्टी जो है इसमें इतनी शक्ति है कि ये 2019 में उनको हरा के दिखा देगी।
राहुल ने कहा कि देश कई समस्याओं से जूझ रहा है और इनके समाधान का हिस्सा आप भी हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। राहुल गांधी ने संकेत भी दिए कि कांग्रेस में आने वाले वक्त में कई बड़े बदलाव होंगे।
रजनीश कुमार बता रहे थे कि कल बहरीन में कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक समारोहों में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ऐसा करने वालों को 5 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। सरकार ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के फैसले के बाद की है, लेकिन इसे लेकर विरोध के स्वर भी सुनाई पड़ने लगे हैं। फिलहाल सरकार ने इसके लिए 20 जनवरी तक का समय दिया है। और जानकारी के साथ हैं लखनऊ से समीरात्मज मिश्र।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि बिना प्रशासन की इजाजत के कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे और इसका उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। यह आदेश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सांस्कृतिक समारोह, राजनीतिक सम्मेलन जैसे सभी सार्वजनिक जगहों पर लागू होगा। यही नहीं, आदेश के अनुपालन में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को लेकर एक मंदिर में दर्शन कर रहे कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया थी।
ये हम लेंगे क्योंकि हम प्रशासन की कदर करते हैं, इस बात को मानते हैं कि जो लागू नियम है हम लागू नियम को मतलब पालन करेंगे। और ये वैसे तो हमारे रेगुलर नहीं बजता है माइक, मगर अगर कोई प्रोग्राम है, शिवरात्रि है, सावन का महीना है, तो हम प्रशासन से इजाजत लेकर ये काम करेंगे।
हम उनका आदेश का सम्मान करेंगे उसी प्रकार से जो आदेश उन्होंने जाहिर किए हैं कि अनुमति लेके ही लाउड स्पीकर बजाएं, उसके लिए हम अनुमति लेके क्षेत्रीय थाने से लाउड स्पीकर बजाएंगे।
ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी आगे करेंगे ये सब पालन करना चाहिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर अच्छा है, अच्छा कदम उठाया।
नहीं अच्छा लगेगा अगर बजेगा तो लाउड स्पीकर, मतलब सामान शिवरात्रि ज्यादा त्योहार तो यही होते हैं, तो मतलब बजे तो अच्छा ही रहेगा।
हालांकि ये आदेश सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होगा, लेकिन इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इसके तहत मस्जिदों की अजान को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। गाजियाबाद के एक मौलवी नूरुल इमाम का कहना था,
अगर निष्पक्ष होकर इस पर काम किया जाएगा और सारे लोगों को एक ही नज़रिए से देखा जाएगा तो ये कदम ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सरकार का पिछले दिनों से जो रवैया रहा है, खास तौर पे मुसलमानों को लेकर, मुझे उम्मीद कम है कि सरकार निष्पक्ष होकर इसकी कार्रवाई करेगी।
सरकार की ओर से सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति बजाए जा रहे लाउड स्पीकरों को 20 जनवरी तक उतरवा दें। आदेश के तहत जिलों के डीएम और एसपी को एक टीम बनाकर 10 जनवरी तक ऐसे स्थलों को चिन्हित करना होगा ताकि समय से उन्हें नोटिस दिया जा सके। अनुमति लेने के बाद भी ध्वनि सीमा का पालन करना होगा। हालांकि ये आदेश हाईकोर्ट का है और सरकार आदेश पर सिर्फ अमल कर रही है, लेकिन राजनीतिक दल इस मामले में सरकार को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद सिंह कहते हैं,
जनता का ध्यान विकास से हटाने के लिए अब गाय गोबर से लाउड स्पीकर पर आ गए हैं। ये सिर्फ जनता का ध्यान विकास की तरफ न जाए, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये लाउड स्पीकर का मामला लाए हैं।
इस बीच सरकारी आदेश के बाद कई जगहों से लोगों ने लाउड स्पीकर खुद ही उतारना शुरू कर दिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि 20 जनवरी तक सभी लाउड स्पीकर उतर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। और सरकार की असली परीक्षा तभी होगी क्योंकि ऐसा करने के बाद उसे हाईकोर्ट को जवाब भी देना है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
सुप्रीम कोर्ट ने कल जब समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराने वाली IPC की धारा 377 पर फिर से विचार करने की बात कही तो LGBT समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया। कोर्ट के इस फैसले पर LGBT समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे सहयोगी विकास त्रिवेदी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का धारा 377 पर फिर से विचार करने का फैसला LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान लेकर आया है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए समलैंगिकों के शारीरिक संबंध को अवैध करार दिया था। ऐसे में LGBT समुदाय के लोगों का कहना है कि इस पर विचार किया जाना जरूरी है क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। नीतीश दिल्ली में रहते हैं और गे हैं। वो कहते हैं,
जब ये क्रिमिनलाइज नहीं था और जब ये परमिशन इसकी रिवोक हुई थी 2013 में, आई बिलीव तो बहुत लोगों, मतलब कुछ लोगों ने सुसाइड किया था, कुछ डिप्रेशन में चले गए थे। इवन आज भी बहुत पुलिस भी है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके ट्रांस पीपल के साथ या फिर नॉर्मल गे लोगों के साथ या मतलब किसी भी जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके साथ यू नो मिसबिहेव करते हैं इस IPC की धारा को लगा के। इस पे विचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कुछ लोग सकारात्मक कदम मान रहे हैं। मृदुल ट्रांसजेंडर हैं। वो कहते हैं कि अगर कोर्ट ने सेक्शन 377 पर फिर से विचार करने की बात कही है तो संभव है कि फैसला पहले से बेहतर आएगा। मृदुल मौजूदा कानून से होने वाली दिक्कतों के बारे में कहते हैं,
अभी जो प्रॉब्लम है ना कम्युनिटी के सामने, अगर आपको लॉ ही क्रिमिनल की तरह से देख रहा है तो आप आगे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कैसे करेंगे, वो एक प्रॉब्लम है कम्युनिटी के सामने।
सुप्रीम कोर्ट के कल के कदम का एक कानूनी पक्ष भी है। इस केस में अब आगे क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब और इसके कानूनी पहलू को समझाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अमित जॉर्ज कहते हैं,
देखिए दो चीजें हो सकती हैं जी। आज जो ऑर्डर हुआ है ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, इट इज ओनली अ रेफरेंस ऑर्डर, क्योंकि एग्जिस्टिंग एक 2-judge bench का डिसीजन है जिसको एक लार्जर बेंच ही ओवर रूल कर सकती है। आज कोर्ट ने ये बोला है कि एक लार्जर बेंच बैठेगी तो वो जो पुराना जो व्यू था सुप्रीम कोर्ट का उसको फिर से रिव्यू करेगी। तो टू थिंग्स कैन हैपन, या तो जो लार्जर बेंच बैठेगी वो बोलेगी हाँ जो पहला व्यू है सुप्रीम कोर्ट का उससे हम सहमत हैं। अगर ऐसा होता है तो आज जो पेटिशनर्स हैं उनका केस डिसमिस हो जाएगा। लेकिन द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि दैट लार्जर बेंच सेज कि नहीं, ये जो पहले व्यू हमने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत है। अगर ऐसा बोला जाता है देन ये जो सेक्शन है 377 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा एंड जो आज की डेट में जो गे रिलेशनशिप्स क्रिमिनलाइज्ड हैं वो सिचुएशन हट जाएगी। फिर
सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद अगर इस कानून में बदलाव होता है तो इसका LGBT समुदाय पर क्या असर होगा और आगे किन चुनौतियों का सामना करना होगा, मृदुल इस पर कहते हैं,
देखिए एक बार ये क्रिमिनल होने का टैग हमारे सर से जब चला जाएगा उसके बाद फिर सोशल इंटीग्रेशन हो गया या जनरल कॉन्वर्सेशंस हो गए उस पे काम करना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर और बदलाव धीरे धीरे करके आना शुरू होंगे।
ऐसे वक्त में जब दुनिया के कुछ देशों में समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से भारत के LGBT समुदायों को काफी उम्मीदें हैं। विकास त्रिवेदी, BBC, दिल्ली।
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कर्नाटक पहुंच रहे हैं ताकि पार्टी को 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। शाह के दौरे से पार्टी के लोग थोड़े घबराए हुए से हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में पार्टी का नेतृत्व उस तरह से एजेंडा तैयार नहीं कर पाया है जिस तरह से अन्य राज्यों की इकाइयों ने किया था। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
BJP अध्यक्ष अमित शाह के आने से कर्नाटका के BJP नेताओं में एक तरह की घबराहट दिखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले साल अगस्त में एक वरिष्ठ नेता को टांग दिया था क्योंकि वो उनका कोई निर्देश भूल गए थे। 31 दिसंबर की मीटिंग में अमित शाह ने बहुत सारे निर्देश दिए जिनकी रिपोर्ट आज शाम को उनके सामने पेश होगी। राज्य बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वमन आचार्य कहते हैं,
What's happening with the recent 2-3 incidents in Mangalore again?
डॉक्टर आचार्य साफ तौर से कहते हैं कि जब अमित शाह अगस्त में आए थे तो हर कोई उनके जादू का इंतजार कर रहा था, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया था कि कामयाबी जादू से नहीं कठोर परिश्रम से मिलेगी। इसको प्रोफेसर संदीप शास्त्री जैसे राजनीतिक वैज्ञानिक और जे एन यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर अलग ही नजरे से देखते हैं।
A lot of people call the Amit Shah School of Election Management clearly has a micromanaged campaign led driven and
बहुत लोग कहते हैं कि यह अमित शाह चुनाव प्रबंधन स्कूल है जहां सूक्ष्म स्तर पर प्रचार होगा जिसकी निगरानी खुद पार्टी अध्यक्ष करेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश और गुजरात में देखने को मिला था और अब कर्नाटका में भी दिखेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि राज्य स्तर पर नेतागिरी पार्टी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को भरोसा नहीं दिलाती है। इसीलिए पिछले बार उन्होंने कहा था कि अभी राज्य नेताओं को सलाह देने का समय हो गया है और अब उनको सुनने का समय आ गया है। ये थे प्रोफेसर संदीप शास्त्री के शब्द। प्रोफेसर शास्त्री डॉक्टर आचार्य की बात से सहमत हैं कि बीजेपी के नेता एक तरफ विकास की बात भी करेंगे जैसे कर्नाटका बीजेपी अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा करते हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े हिंदुत्व की बात करते हैं ताकि विभिन्न अनुभागों को विभिन्न संदेश जाएं। लेकिन राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष बीएल शंकर कहते हैं कि कई कारणों से कर्नाटका में हिंदुत्व ज्यादा काम नहीं करता है। उन्होंने कहा,
हिंदुत्व एजेंडा इज प्रिवेलेंट इन ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ कर्नाटका, नॉट ऑल ओवर कर्नाटका, एस्पेशियली इन कोस्टल लाइन।
हिंदुत्व का जो सवाल है वो सिर्फ तटीय इलाकों में काम कर रहा है, लेकिन राज्य के दूसरे इलाकों में जाति कारक काम करती है क्योंकि हमारे राज्य में आम लोग विभाजनकारी ताकतों को अहमियत नहीं देते हैं और योगी आदित्यनाथ को आम लोग हिंदू आइकन नहीं बल्कि एक विभाजनकारी के रूप में देखते हैं। ये थे बीएल शंकर के शब्द। धारवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरीश रामास्वामी अमित शाह का लगातार कर्नाटका दौरे पे आने का वजह कुछ और ही कहते हैं। उनका मानना है कि
प्रॉब्लम्स विद इन द बीजेपी इन कर्नाटका इज नॉट रिजॉल्व्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू काउंटर द कांग्रेस ग्रोथ।
जिन विषयों पर बीजेपी कांग्रेस पर दबाव डाल सकती थी उस पर वो नाकाम रही, तो इसीलिए अमित शाह को अभी आना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बीजेपी को आत्मरक्षा बना दिया है। उसके अलावा कांग्रेस ने लिंगायत समुदाय का उनका वोट बैंक तोड़ दिया है। ये थे प्रोफेसर हरीश रामास्वामी के शब्द। दरअसल कर्नाटका में कांग्रेस के पास सिद्धरामैया जैसे एक क्षेत्रीय नेता है जिन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को काफी अहमियत दी है और बीजेपी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर निर्भर हो गई है। अगले 3 महीनों में किस तरह दोनों पक्ष अपने पत्ते खेलते हैं ये देखना पड़ेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
मात्र 500 रुपए में आधार की जानकारी लीक होने का दावा करने वाली खबर करने वाली द ट्रिब्यून की रिपोर्टर के खिलाफ ही जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई, मगर ये पहला मामला नहीं है। 1981 में इंडियन एक्सप्रेस के खोजी पत्रकार अश्विनी सरीन ने मानव तस्करी के रैकेट को सामने लाने के लिए धौलपुर से कमला नाम की महिला को खरीदा था, मगर दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया था। इस पर एक फिल्म भी बनी थी। देश में खोजी पत्रकारिता करने को लेकर हालात कैसे हैं, बीबीसी संवाददाता सरुप्रिया सांगवान ने बात की कुछ खोजी पत्रकारों से, सुनिए ये रिपोर्ट।
भारत में खोजी पत्रकारिता पर सरकार और प्रशासन के रवैये को लेकर बीबीसी ने संपादकों और खोजी पत्रकारों से बात की। द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन कहते हैं कि जहां बड़े बड़े गुनहगार छूट जाते हैं वहां जनहित में पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दायर होते हैं।
जब स्टेट और UIDAI ऐसे कदम उठाता है तो पूरी तरह से संदेश ये भेजने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप पत्रकार हैं तो आप खोजी पत्रकारिता के सपने छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के सत्य को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करते हैं तो आपको हम कानूनी जो है कार्रवाई में पूरी तरह से फंसाएंगे। ये एक संदेश सरकार दे रहा है और ये न सिर्फ मीडिया के खिलाफ एक हमला है बल्कि जो सिटीजनशिप है, जो पब्लिक एट लार्ज है, जिनको सच जानने का अधिकार है, उनके खिलाफ भी ये एक तरह से हमला है।
गुजरात दंगों के लिए सजा काट रहे बाबू बजरंगी का स्टिंग करने वाले पूर्व पत्रकार आशीष खेतान ने कहा कि खोजी पत्रकारों पर कार्रवाई कानूनी तौर पर भी गलत है।
जब सोच ही नहीं आपराधिक है, जब मंशा ही नहीं आपराधिक है, तो और जो पूरी कहानी लिखी गई और करी गई वो पब्लिक इंटरेस्ट के नजरिए से की गई, तो इसमें क्रिमिनलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर इस तरीके से सरकारों ने FIR लिखी तो प्रेस की फ्रीडम खत्म हो जाएगी। तो ये सरासर गलत है और FIR को फौरन इन्हें सरकार को वापस ले लेना चाहिए।
गुजरात फाइल्स की लेखिका और खोजी पत्रकार राणा अयूब बताती हैं कि उन्हें खुद भी अपने रिपोर्ट के लिए ऐसी कानूनी कार्रवाइयां झेलनी पड़ी।
इतना बड़ा स्टेप लेना एक जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, आप एक FIR फाइल कर दें, आई थिंक कि बहुत खुशी हुई। पहली बात ये जानकर कि ट्रिब्यून अपने रिपोर्टर के पीछे बहुत ही फर्मली खड़ा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आज इंडियन स्टेट ने फिर ये एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि कितना फ्री प्रेस है हिंदुस्तान में और हमारे अंदर कितनी टॉलरेंस है टू ट्रूथ एंड फैक्ट। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है और ये हिंदुस्तान में ये होता आ रहा है। इससे पहले भी जितनी कई बार हिंदुस्तान जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ है, उन पर सेडिशन के चार्ज लगे हैं। मेरी किताब जब खुद जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक जिसकी जो मैंने स्टोरी किया था, उसके बाद जब मैंने किताब लाई उसके बाद बहुत सारे मुझे ये झेलना पड़ा है, बहुत सारे केसेस झेलने पड़े हैं मुझे।
फिलहाल ट्रिब्यून की रिपोर्टर रचना खैरा ने BBC को कहा कि FIR के बावजूद वे UIDAI की मदद के लिए तैयार हैं।
सरुप्रिया सांगवान की इस रिपोर्ट में मीडिया कर्मी बता रहे थे कि खोजी पत्रकारिता को लेकर देश में किस तरह का माहौल है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से छपे अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद है रजनीश। क्या कहते हैं आज के अखबार रजनीश?
आज के सारे अखबारों को देखे आदर्श, तो जो समलैंगिक सेक्स से जो जिस पे सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करने वाला है, जिसको डिक्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है, तो वो अपराध नहीं होगा, उस पर फिर से विचार करे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है इस खबर को सारी अखबारों ने अपनी लीड खबर बनाई है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है समलैंगिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच IPC के सेक्शन 377 की वैधता पर फिर से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला किया है। सेक्शन 377 में वयस्कों के बीच सहमति से भी बनाए जाने वाले समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे में रखा गया है और इसी पर कोर्ट फिर से विचार करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है आदर्श कि CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से संजय लीला भंसाली की जो विवादित हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा पद्मावती, उसको हरी झंडी दे दी गई है और 25 तारीख को रिलीज भी होने वाली है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि वो अपने राज्य में इसको रिलीज नहीं होने देंगी, क्योंकि रानी पद्मावती राजस्थान के लिए गर्व हैं और हम उनकी शान पे कोई आँच नहीं आने देंगे। तो पद्मावती की मुश्किलें कम नहीं हो रही,
मतलब
है
खत्म होने का नाम नहीं लेंगे।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के अनुसार आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवार संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता, सुशील गुप्ता सोमवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए और ये तीनों पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं और इस उम्मीदवारी को लेकर आम आदमी पार्टी में काफ़ी कलह भी हुई है, कुमार विश्वासी से खफा भी थे। जनसत्ता की खबर के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सरकारी बसों और मेट्रो की सवारी के लिए कार्ड जारी किया है और इस कार्ड के जरिए आप बसों में और मेट्रो में दोनों में एक साथ यात्रा कर पाएंगे, मतलब अलग अलग कार्ड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी।
जी,
तो आज की ये मुख्य खबरें हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। बिहार के बेगूसराय ज़िले में अपनी बहन को आज़ाद कराने के लिए भाई का एक कोठे पर ग्राहक बनने का मामला सामने आया है। यहाँ एक भाई को देह व्यापार में फंसी अपनी बहन को आज़ाद कराने के लिए उस कोठे पर जाकर ग्राहक बनना पड़ा जहाँ उसकी बहन कैद थी। किन हालात में एक भाई को ऐसा करना पड़ा, क्या इसके बाद भी बहन इस दलदल से निकल पाई, बता रहे हैं पटना से मनीष अंडेले। बता दें कि इस रिपोर्ट में भाई बहन के जो नाम आप सुनेंगे वो काल्पनिक हैं।
एक नौजवान दलाल को रुपये देकर एक औरत के साथ कमरे में दाखिल होता है, मगर चंद मिनटों के बाद ही वहां से निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद वही नौजवान पुलिस के साथ वापस लौटता है। इस बार वह उस औरत को देह व्यापार के दलदल से बाहर निकालने आया है। दरअसल वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। पहली नजर में ये चौंकाने वाली घटना फिल्मी या काल्पनिक लग सकती है, लेकिन बुधवार 3 जनवरी को बेगूसराय जिले के बखरी में कुछ ऐसा ही हुआ। शिवहर की प्रतिमा के मुताबिक करीब 3 साल पहले अशोक खलीफा नाम का एक शख्स उन्हें सीतामढ़ी से भगाकर बखरी ले आया और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। करीब 3 सप्ताह पहले जब उन्हें एक पहचान का फेरी वाला दिखा तो प्रतिमा को अपनी आजादी की आस जगी।
हमको बंद करके रखा था, बड़का बड़का ताला मार के हमको निकल नहीं पाते थे। फेरी वाला आया था ना फेरी करने के लिए, काट पीछ वाला कपड़ा, तो उसको हम देख लिए। तो वो बोला कि हम पहचान रहे तुमको, तो बोले हम भी तुमको पहचान रहे। बोला ठीक है, हमको लंबर उम्बर दे करके हम बात करते थे, हम निकलने के लिए करते थे, हमको निकल नहीं देने देता था।
दरअसल वह फेरी वाला प्रतिमा के मायके का था। फेरी वाले ने शिवहर आकर पूरा मामला प्रतिमा के परिवार वालों को बताया और इसके बाद प्रतिमा को आजाद कराने उनके मायके वाले बेगूसराय पहुंचे। प्रतिमा के भाई मनोज ने उनकी रिहाई की कहानी इन शब्दों में बयान की।
तुमको पता चला तुम गए गांव के बन के गए, तो भेंट हुआ, तो बात किए, हम बात किए, हमारे वही का थाना था, उसके हम सर पे ले गए बात करा के, तुम छापामारी करा के ले आए घर।
प्रतिमा के पिता द्वारा दर्ज FIR पर बखरी थाने की पुलिस ने 3 जनवरी को छापेमारी कर प्रतिमा और एक अन्य महिला को आजाद कराया। दूसरी महिला झारखंड की है। FIR में नामित 2 लोगों में से एक नसीमा खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे अशोक खलीफा अभी फरार हैं। बकरी थानाध्यक्ष शरद कुमार के मुताबिक दोनों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई और अदालत में उनका बयान दर्ज कराया गया। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
और अब सुनते हैं खेल समाचार सुमिरन प्रीत कौर से।
केप टाउन में टेस्ट मैच हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। साउथ अफ्रीका ने भारत को 72 रन से हरा दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब 2 टेस्ट मैच और होंगे। जहां एक तरफ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं भारत के विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने रिकॉर्ड बनाया। एक टेस्ट मैच में 10 कैच लेने वाले वो पहले विकेट कीपर हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। हाल ही में खत्म हुई एशेज सीरीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही है श्रृंखला और पहले खेले जाएंगे 3 टेस्ट मैच। टेस्ट मैच फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट का असर साफ देखा जा रहा है, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो या अप्रोच की। इस बात पर रोशनी डाल रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन।
सर, टेस्ट मैचेस में आजकल हम देख रहे हैं कम से कम पिछले 8-10 साल से के बल्लेबाज जो है ज्यादा अटैकिंग स्ट्रोक्स खेलते हैं। डिफेंस जो है शायद हर जगह विश्व में डिफेंस का जो एक महत्व होता था, एक इम्पोर्टेंस होता था, वो अब कम हो गया डिफेंसिव बैटिंग का। तो स्ट्रोक ज्यादा खेले जाते हैं, रिस्क ज्यादा लिए जाते हैं और विकेट्स जो है ज्यादा जल्दी गिर जाती है अगर बॉलर्स को मदद मिलती है। साउथ अफ्रीका ने भी कुछ खास रन नहीं बनाए, हालांकि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का डिसीजन इसी इरादे से था कि कम से कम 400 रन खड़ा कर दें और फिर प्रेशर डाले इंडिया पे, वो हुआ नहीं। और इंडिया की शुरुआत इतनी बुरी हुई कि रिकवरी अगर हुई है तो दाद देनी होगी हार्दिक पांड्या की। युवा खिलाड़ी है लेकिन बेझिझक निडर होकर खेलते हैं और उनकी बैटिंग अप्रोच में ही पता चलता है कि T20 का इन्फ्लुएंस कितना आ गया है मॉडर्न क्रिकेट।
तो T20 फॉर्मेट के असर और अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अयाज मेमन। अब बात टेनिस की। 15 जनवरी से शुरू होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा नहीं लेंगे एंडी मरे, सेरेना विलियम्स और विक्टोरिया अजरेंका। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के ही निक किर्गियोस ने जीता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टाइटल।
और अंत में मुख्य समाचार।
BBC समाचार। अब से कुछ ही देर में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अधिकारी बैठक करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2 सालों में पहली बार मुलाकात हो रही है। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि अमेरिका अल सलवाडोर के लगभग 2,00,000 लोगों को दी गई अपने यहाँ रहने और काम करने की अनुमति को रद्द कर देगा। एप्पल में 2 बड़े निवेशकों ने उसकी साख के नुकसान को लेकर चेतावनी दी है। इनका कहना है कि बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल से पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर सोचने की ज़रूरत है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच कर रहे विशेष जांचकर्ता रॉबर्ट मुलर द्वारा ट्रंप से पूछताछ को लेकर प्रारंभिक बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया सिंधुवासिनी ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।